Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंथ में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. इस कार्यक्रम में आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हम हाजिर हैं और इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक चंद्रशेखर जी. चंद्रशेखर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
थैंक यू.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ में है अनुभा.
थैंक यू निखिल. Domestic stock indices end with slight decline. Sensex closes at 80,040. Nifty settles at 24,406. SEBI study warns against intraday trading risks, says young traders rose to 48% in 23-24. And India's medical devices industry to grow $50 billion by 2030, says Drug Controller General of India Rajiv Singh Raghuvanshi.
घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 80,040 और निफ्टी 24,406 अंक पर पहुंचा. सेबी ने इंट्राडे ट्रेडिंग जोखिमों के खिलाफ दी चेतावनी. 2023-24 में युवा व्यापारियों की भागीदारी लगभग 48% तक बढ़ी. भारतीय औषधि महानियंत्रक के अनुसार भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग 2030 तक $50 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान. भारत के इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 109 अंक यानी 0.14% की गिरावट के साथ 80,040 अंकों पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7 अंक यानी 0.03% गिरकर 24,406 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी की 156 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची जबकि 12 में गिरावट देखी गई. बीएसई के व्यापक बाजार में मिडकैप सूचकांक में 0.22% की गिरावट दर्ज की गई. वहीं स्मॉल कैप में भी 1.14% की सुस्ती देखी गई.
इंडिया इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी एंडेड इन रेड विथ स्लाइट डिक्लाइंस टुडे. द बीएसई सेंसेक्स डिक्लाइंड 109 पॉइंट्स और 0.14% टू क्लोज एट 80,040. द एनएसई निफ्टी शेड 7 पॉइंट्स और 0.03% टू क्लोज एट 24,406. In Nifty, 156 companies hit their 52-week high, while 12 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down by 0.22%, while the small-cap index slid 0.14%. 13 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Tata Motor, 6%, Larsen & Toubro, 3%, and Sun Pharma, 2.8%. On the other side, the major laggards were Axis Bank 5%, Nestle India 2.5%, and ICICI Bank and Titan 2% each. In sectoral indices at the BSE, 10 out of 20 sectors logged gain. The top gainers were oil and gas 3%, energy 1.7%, and auto 1.2%. The major laggards were metal 1.2%, BankEx 1%, and Realty 0.8%. The overall market breadth was positive at the BSE. Out of 4,023 companies, shares of 2,097 companies advanced, shares of 1,812 companies declined, while shares of 114 companies remained unchanged. Mr. Shekhar, we've been seeing that markets have been ending in red, although not, you know, much of a fall, but still in the red for 5 consecutive sessions now. Yes. And especially since the last, you know, it's been three days now since the budget was presented. What is the reason for this decline? Are the markets still reacting to the budget proposals?
Yeah, in fact, there are a couple of reasons, you know, which are responsible for decline in the stock market. You know, first, we look at the U.S. market. U.S. market is going down, and because of their own issues, you know, the U.S. technology companies are not doing well as anticipated. And secondly, the impact of the decline of the U.S. market is being felt in other markets also, like Japan and Hong Kong and Korean markets, and of course London market also. So that is the one reason. And the second reason is the budget announcement. You know, some of the budget announcements were not taken very positively by the market, especially, you know, the STT was increased, and second was the second important announcement which triggered the fall was this
the long-term
increase
capital.
In short-term capital gains tax, which was increased from 15% to 20%. And also the long-term capital gains tax was increased from 10 to 12.5%. So all these factors, and plus, you know, there was some profit booking because the market was rallying at a very high point. That was another reason. And thirdly, you know, there was some withdrawal by the FIIs. You know, yesterday the withdrawal were to the order of the around 5,000 crore. So all these factors are responsible for decline in the market. But the another point is, you know, that the, if we look at today's market, you know, it opened gap down, which is around Sensex was more than 600 points down. But slowly it has recovered, and maybe probably we see some more recovery tomorrow.
शनिशेखर, आज मार्केट का जो रुख हमने देखा, कहीं ना कहीं वो हमें ये भी शायद दर्शाता है कि नेगेटिव होने के बाद भी काफी हद तक पॉजिटिव हुआ और अंत में संभल करके बंद हुआ, ऐसा भी हम कह सकते हैं कुछ मायने में, क्योंकि जो स्टॉक्स सुबह के समय में रेड दिख रहे थे ज्यादातर वो ग्रीन में देखे गए और लोगों ने काफी पैसा भी जमकर कमाया है आज के दिन में. लेकिन मेन चीज जो देखी जा रही है कि सारे ग्लोबल मार्केट का असर तो इस पर नहीं देख रहे हम.
नहीं, ग्लोबल मार्केट कैसा, अगर आप मॉर्निंग में देखें तो सुबह सुबह जो मार्केट जब खुली थी तो मार्केट बहुत ही गैप डाउन खुली थी, मतलब जो डिक्लाइन था वो अराउंड मोर देन 600 पॉइंट था सेंसेक्स में, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे मार्केट ने रिकवर किया, और जो बंद हुई है तो करीब करीब जो कल के लेवल के पास, थोड़ा नीचे है लेकिन उसके लेवल के पास बंद हुई है. तो हम देखें कि दिन भर में रिकवरी हुई है मार्केट में.
Chandrasekhar, you know, because like you have just mentioned that when the markets opened, of course, it was also a reflection of the U.S. markets, which were in red, which ended in red yesterday. But of course, as the day progressed, the markets made up for it and they recovered. Do you think, what is the role of especially retail investors in this? Because, you know, like you were saying that the markets have been reacting to some of the proposals, notably the LTCG and short-term capital gains, you know, announcements. And the FIIs, because of that and because of the STT tax, they, you know, they have been withdrawing money from the Indian market. So, given all this, what is the role, how do you see the, how significant is the role of the retail investors in India? Because they are the ones who are propping up the market.
Yeah, you know, retail investors, you know, especially those who don't play in the intraday market, you know, because they are long-term, basically they are long-term investors. So once they buy a stock and they see profits, you know, they hold on to the profits. But the problem occurs with FIIs because, you know, they book profit quickly and then, you know, they have their own metrics and their own calculations. So they influence the market. As far as retail investors are concerned, and those with a long-term perspective, you know, they are staying invested and they are holding on to the market.
And that is also in a way, you know, helping the markets to prop up. And, you know, like we were saying, not almost flattish close, but not very significant declines.
Yeah, not very significant. Because retail investors are there, then domestic institutional investors are there, because they don't behave the way the FIIs behave. So that is one thing which is positive about the Indian markets, and that is holding, I mean, that is the reason why the markets, you know, was nearly at the yesterday's level.
चंद्रशेखर, अभी बजट से पहले के अगर मार्केट का हाल देखें तो बैंकिंग सेक्टर काफी हद तक लोगों को लाभान्वित करता रहा, लेकिन बजट के आने के बाद बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये रियलिटी शेयर्स की हम बात करें तो इनमें लगातार डिक्लाइंस हम देख रहे हैं. वहीं ऑयल और एनर्जी का जो सेक्टर है वो गति पकड़ रहा है.
देखिए, बैंकिंग सेक्टर का जहां तक है तो अब जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, आज तो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव में आ रहे हैं. जैसे आज कई बैंकों के रिजल्ट्स आए तो वो पॉजिटिव में है, तो फाइनेंशियल सेक्टर एज सच इज नॉट डूइंग बैडली, मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये जो मार्केट का अप एंड डाउन है ये तो मार्केट का मैकेनिज्म है एक तरीके से। और दूसरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का है वो प्रोबेबली ऐसा जो क्रूड प्राइसेस में आज थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है वो उसके दो कारण हैं। एक तो है कि सर चाइना में उतनी डिमांड नहीं है जितनी एंटिसिपेट कर रहे थे, दूसरा अगर ये मिडिल ईस्ट में अगर कोई सीज फायर की टॉक्स आगे बढ़ती है तो इससे क्रूड डिक्लाइन होगा, तो एक ये भी रीजन है।
तो अभी इसमें निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है?
नहीं, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से जो आगे आने वाली न्यूज है वो तो शायद पॉजिटिव ही हो, स्पेशली जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी आएगी नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी है अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वो आएगी 6-7 तारीख को, तो उसमें कोई ऐसा उसमें पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड। दूसरा यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है अभी जुलाई एंड में, तो उसमें भी शायद उसमें तो हालांकि जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई किसी ने व्यू नहीं लिया है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो घटना शुरू होंगे, वो कब शुरू होते हैं वो यूएस फेड ट्रिगर करेगा, उसके बाद तो फिर पॉजिटिव न्यूज आएगी।
चंद्रशेखर, वी वर टॉकिंग अबाउट द बजट प्रपोजल्स एंड लाइक यू सेड दैट वन ऑफ द प्रपोजल वाज द हाइक इन द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिक्योरिटीज। नाउ देयर इज दिस यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड मार्केट ट्रेडर्स स्पेशली दे फील दैट दिस अनाउंसमेंट यू नो विल इम्पैक्ट द प्रोबेबिलिटी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स, and which is why probably the markets, although this was something you know that people had already factored in, but that is why the markets are behaving like this, because
the increase in STT is aimed at curbing the younger generation from entering into the futures and options trade, because as the SEBI study and study after study have found out that you know younger people are entering into F&O trade and incurring huge losses, you know, like most of them they incur losses, but you know the urge to make quick money is there, so that's why they enter F&O trade, which is risky, and which F&O trade is basically for hedging their position, but people have started trading in F&O, which is not a very good thing. So STT was aimed at discouraging the F&O traders, especially the day traders.
We will come to the details of that particular study that you are mentioning right now later in the program, but let's first see how the rupee behaved vis-a-vis the US dollar from Nikhil.
चीनी युआन में तेजी और स्थानीय हाजिर और नॉन डिलीवरेबल वायदा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप के चलते रुपए को 2 पैसे की बढ़त मिली और ये अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.69 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। चंद्रशेखर, वापस हम मार्केट की तरफ अगर बात करें तो बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के काफी चर्चा रही है, गलियारों में देखा गया है कि इसको लेकर के कैसा एटीट्यूड होना चाहिए लोगों के बीच में। हालांकि जहां तक मैं समझ पाया हूं शायद ये इसलिए भी ऐसा किया गया कि परिवारों को अब आकर्षित किया जाए निवेश के लिए, वो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकें।
हाँ, ये तो हमेशा इंटेंशन रहा ही है गवर्नमेंट का ये और मार्केट का भी कि जो है जो इन्वेस्ट करने आए वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग लेकिन हालांकि थोड़ा सा लॉन्ग मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो बढ़ाने के बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 20% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो है जो कि आप अपनी आप आज पोजीशन लेते हैं और विद इन ए ईयर उसको आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% का टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और अगर आप एक साल से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जो कि 12.5% है। तो ये गवर्नमेंट का ये तो है ही है इंटेंशन कि जो है लोग जो है अपने इन्वेस्ट करें और वो इन्वेस्टेड रहें, तो इसीलिए जो है वो ये डिफरेंस भी है और जो चेंजेस किए गए हैं उसका जो इंटेंशन यही है कि पीपल शुड रिमेन इन्वेस्टेड।
और जैसे कि अभी निखिल बात कर रहे थे, ही मेंशन्ड दैट यू नो द रियल एस्टेट, वी बीन सीइंग द रियल एस्टेट इज नॉट बीन डूइंग सो वेल, डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बिकॉज ऑफ दीज टू चेंजेस इन द हाइक इन द टैक्सेज इन दीज टू पर्टिकुलर कैटेगरीज एंड द रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन इन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी? So do you think that's going to have, you know, like we are seeing at the moment, that's going to have, if we talk about the coming days, the coming few weeks and a couple of months, that's going to have an impact on the real estate sector?
Yeah, real estate, in fact, real estate investors are worried about this removal, this abolition of indexation. Because, and the government has come out with a clarification and they have come out with their own table which says that the prices of real estate increase more than the inflation rate. So if that happens, you know, if they have calculated that if the price of a property goes up by 9 to 11%, more than 9 to 11%, then the new rate will benefit. New rate without indexation will benefit them. But if the property prices do not go up by 9 to 12% or more, then you know, then the old tax regime is beneficial. So there's a position of, I mean, there's a influx kind of, and people are still not able to digest, you know, the new regime.
And I think there is also a little bit of confusion, which as the days go on, as the days pass, you know, this whole situation, this whole proposal will become more clear, and you know, then we will get to know exactly what, who's benefiting and who's not benefiting from these steps that have been taken by the government.
Yeah, that will happen. That will happen as we go along.
Moving on, a study by market regulator SEBI reveals that the share of young intraday traders aged less than 30 years grew 48% in financial year 22-23 as compared to 18% in financial year 2018-19, warning against the risks involved with intraday trading in equity. The report of the study released yesterday also noted that around 1 in 3 individuals who trade in the equity cash segment now trades intraday. This is a surge of over 300% in the number of individuals participating in intraday trading in the equity cash segment in financial year 23 compared to financial year 19. More than 70% or 7 out of 10 individual intraday traders in the equity cash segment have incurred losses in financial year 2023, reveals the study. Further, the study noted that the proportion of loss makers increased to 80% for traders with more than 500 trades in a year. The percentage of loss makers among younger traders aged less than 30 years was higher, that is 76% in financial year 23, as compared to other age groups. Over and above the trading losses incurred, loss makers expended an additional 57% of their trading losses as trading costs in financial year 22-23. The SEBI study said the study is expected to enhance awareness among individual traders about the risks involved in intraday trading in the equity cash segment. Chandrasekhar, as we were just discussing and you were telling us at the beginning of the program, this is something to worry about, the increase in the, you know, the number of young intraday traders, especially those aged less than 30 years, growing to 48%.
Yeah, this is quite worrisome. You know, it's very easy to trade, you know, by the click of a mouse, you can place orders of whatever amount you want. But before entering into the intraday trade, one must first learn the art of trading, learn how to trade. You know, they must be able to read the markets, they must be able to read charts, and they have some understanding of the risks involved in intraday trade. And this report is on the equity, and the same is also true for the F&O segment. Mm-hmm. F&O segment is still more dangerous because there one can make quick money and one can and the losses can be wiped out in, say, in minutes. So these are two things, you know, which is not good for the youngsters, you know. And you know, you can do intraday trade provided you know the risks involved and you know how to trade and you know and you have the ability to read the charts. Then only intraday trade can be profitable. But that's why, you know, the younger people, they think that they can just come to the market, make quick money. So it's not possible. It's easy, but it's not easy to make money. It's easy to trade, but not easy to make money.
तो यहाँ पर ये समझना आवश्यक है कि यदि हम इस तरह के कोई भी काम करना चाहते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले मार्केट को समझना आना चाहिए और आपकी रिस्क कैपेसिटी को देख करके ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. हम किसी को डिमोरलाइज तो नहीं करेंगे कि आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें. सरकार भी यही कहती है,
लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भी हर बार यही कहते हैं कि अपनी रिस्क कैपेसिटी आप चेक करिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भी चंद्रशेखर ने भी कही कि मार्केट्स को स्टडी करिए और बिल्कुल सिर्फ एक क्विक गेन्स के आप चक्कर में पड़कर पैसा ना इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग ना करें.
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं. एशियाई शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज नकारात्मक माहौल देखा गया. जापान के निक्केई में 3.4% की भारी गिरावट देखी गई. हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8% के नुकसान में रहे. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.9% की कमजोरी दर्ज की गई और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.53% फिसल गया. प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे. समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस के कैक में लगभग 2% की की गिरावट देखी गई। जर्मनी का डेक्स 1.4% की सुस्ती में रहा, वहीं लंदन का फुटसी 100 0.8% के नुकसान में रहा था। चंद्रशेखर, जापान के मार्केट को एक सधा हुआ मार्केट माना जाता है, बहुत ही कम इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन 3.4% की भारी गिरावट को इसे निवेशकों को हल्के में लेना चाहिए या ये भी पार हो सकता है आसानी से?
देखिए, जापानीज मार्केट जो मार्केट खोलने का टाइम होता है, तो जब यूएस बंद होता है तो फिर जापान खुलता है, तो एक्चुअली ये जो पूरा जो ये मार्केट का सिस्टम है वो यूएस से शुरू होगा। यूएस इज द मदर ऑफ द ऑल मार्केट्स, यू नो, मे बी कमोडिटी हो गया है, चाहे स्टॉक हो गया, इक्विटी हो गया या करेंसी मार्केट हो गया, तो यूएस का जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको जापान मार्केट, फिर ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इस तरीके से मार्केट्स खुलते हैं तो वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब फिर जैसे जब हमारा मार्केट बंद होता है तो बंद होने के पहले पहले फिर ये जर्मनी का मार्केट और लंदन मार्केट खुल जाता है, तो और फिर उसके तब तक फिर यूएस मार्केट फिर खुलता है, तो ये पूरा एक साइकिल है। तो इनफैक्ट द फॉल स्टार्टेड फ्रॉम द मदर ऑफ ऑल मार्केट, सो इट इज कंटिन्यूइंग। बट
जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री यूएस मेजर इंडस्ट्रीज हैड अ सिग्निफिकेंट फॉल ऑन वेंसडे एज प्रॉफिट रिपोर्ट्स फ्रॉम टेस्ला एंड अल्फाबेट कॉस्ट द रिट्रीट। द S&P 500 स्नैप्ड इट्स 356 सेशंस स्ट्रीक एंड फेल मोर देन 2%। NASDAQ tumbled 3.6%, Dow Jones Industrial Average fell 1.25%, and S&P 500 lost 2.3%. Chandrasekhar, as you were just saying at the beginning of the program, that of course this is because of the results that have come out, notably Tesla and Alphabet. Yeah. Tesla, of course, the result is quite below the par, but Alphabet, not according to the market expectation. Apart from this, do you think also it's like you were saying, it's the third U.S. Fed meeting, which is due just a few days from now on the 31st of July. Although the U.S. Fed chairman did say that he is not going to specify the time for Fed, rate cuts. But that is also something which is worrying the investors, as well as the whole, you know, this activity going around, or the whole the U.S. elections which are around the corner. Do you think that's also affecting the investors?
Yeah, in fact, U.S. Fed meeting is there, but apart from the U.S. Fed meeting, the U.S. elections are going to impact. You know, they have created some uncertainty,
yes,
especially after, you know, that
Joe Biden,
the incident,
yes,
after Trump incident, and you know, there's some uncertainty in the U.S. and that is one reason, you know, why U.S. is a bit jittery at this point of time.
और श्रोताओं, अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने आज कहा कि उचित विनियमन के साथ भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग 2030 तक 5 गुना बढ़कर $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि किसी उद्योग को विनियमित करने से कई फायदे मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है गुणवत्ता निगरानी और मानकीकरण, जो स्वास्थ्य सेवा में जरूरी है क्योंकि ये लोगों के जीवन से संबंधित है। एक विनियमित उद्योग निर्मित उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास पैदा करता है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्तमान में अपने 80% चिकित्सा उपकरणों को आयात करता है, जिनमें से केवल 20% घरेलू स्तर पर ही निर्मित होते हैं। सरकार ने इस संतुलन को बदलने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। श्री रघुवंशी ने कहा कि 1.5 साल के भीतर 3,200 से अधिक विनिर्माण इकाइयों और 10,000 आयात लाइसेंसों को लाइसेंस देना महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। चंद्रशेखर, चिकित्सा उपकरण उद्योग अपने आप में एक बहुत ही विशालकाय उद्योग है और तमाम छोटे बड़े उद्योग भी इसके साथ में जुड़े हैं, और आजकल हम देखें एमएसएमई को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस तरह के उद्योगों में शामिल होने के लिए, तो कैसा भविष्य आपको नजर आता है?
ये इसका भविष्य तो है, क्योंकि डिमांड तो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 80% जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत ही प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लगती है और मशीनें होती हैं, तो उस तरीके के हमें फिर अगर प्रोडक्शन बेस बनाना है तो उस तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें स्कोप तो बहुत है, लेकिन इसमें डिफिकल्टीज भी हैं, क्योंकि आप उस स्केल पे जब तक आप नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तब तक वो वायबल नहीं होगा, तो सरकार का सपोर्ट चाहिए। और डिमांड की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि हमारा जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, चिकित्सा प्रणाली मतलब में जो प्रोग्रेस हो रही है उसके हिसाब से तो इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन सरकार का सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री को और इसमें स्कोप।
इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, 2020 में जब कोविड भारत में आया उसके पहले तक तमाम ऐसे चिकित्सा उपकरण थे जो बहुत बड़े पैमाने पर हमें विदेशों से मंगाने पड़ते थे, लेकिन देश में फिर उनको बनाने की शुरुआत की गई, तब से लेकर के अब तक स्थिति काफी बदल चुकी, काफी हद तक बदलाव लाए गए हैं और अब भी लगता है कि एक नई दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, नई दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें और ज्यादा, क्योंकि देखिए आप जैसे एमआरआई मशीन्स हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही हाई क्वालिटी की मशीन्स होती हैं, जैसे सीटी स्कैन करना वगैरह, तो अभी जब भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो बाहर की होती हैं, तो इसको बनाने में हमें टाइम लगेगा, बट मे बी वी आर ऑन द राइट ट्रैक.
एंड यू नो चंद्रशेखर, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इज दैट व्हाट आर द, यू वर मेंशनिंग द डिफिकल्टीज which are, you know, about for this sector. So what are the specific difficulties, and do you think schemes like PLI and the, you know, encouragement to MSMEs who are involved in making these equipment, that would go a long way in making India more self, you know, self-sufficient so far as medical devices and equipment are concerned?
Yes, PLI scheme will definitely help, and we need to give incentive to the domestic industry because, you know, the scale has to be achieved, you know, unless we achieve the scale, you know, it may not be viable to produce so high precision in like machines, you know, which are very expensive machines.
And do you also think that, you know, like we just saying that currently India imports 80% of its medical devices and only 20% are domestically manufactured. So once we increase with the proper regulation and as the DCGI is saying that it is estimated to grow fivefold to $50 billion by 2030. So with proper regulation and with proper encouragement and incentives and schemes by the government, that will also, you know, cut down on the medical costs for the common man.
Yes, if the equipment are produced in India, it will become less costly, and it will help, you know, the whole sector needs to, I mean, to be encouraged, you know, because we have a large population, we need machines, we need medical equipment, and there is no reason, you know, why this sector cannot be, should not be encouraged.
Moving on to commodities, Brent and WTI crude have been trading nearly 2% down in the global crude market today. Brent crude decreased by 1.9% to $80.16 per barrel. The US West Texas Intermediate was down by 1.9% to $76.08 per barrel when reports last came in.
और आगे बढ़ते हैं. सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.65% घटकर 68,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. वहीं चांदी का मूल्य 4.23% घटकर 81,340 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया. चंद्रशेखर जी, सोने और चांदी में इस गिरावट के क्या मायने निकल करके सामने आते हैं?
एक्चुअली सोने चांदी की जो गिरावट है इसको दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो जो हमारी डिमांड है, तो हमारी डिमांड शायद इस समय कम है. दूसरी बात जो ये है, एक तो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं कि ग्लोबल उसमें प्रोडक्शन कैसा हो रहा है और ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व. बट हम ग्लोबल फैक्टर्स पे अगर ना भी जाएं तो हमारी जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हुई. और दूसरा जो गिरावट का एक कारण है कि जो कस्टम्स ड्यूटी है वो बजट में वो कम की गई है, 15 से 6% कर दी गई है. तो एक वो भी रीजन है कि जो प्राइसेस जो हैं वो थोड़े कम हुए हैं. और दूसरा हमारा इम्पोर्ट जो है, जो एफटीए कंट्रीज हैं शायद ये स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहां से जो हमारा इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है और वहां से थोड़ा चीप इम्पोर्ट बढ़ा है. तो इसलिए सप्लाई बढ़ी है, डिमांड शायद उतनी नहीं बढ़ी है. और दूसरा कि जो ये कस्टम ड्यूटी कट करी है इसका भी एक कारण है. जो
ये ड्यूटी कम करने की जो आप बात है, इसका फायदा क्या इसमें होगा कि जो गोल्ड बॉन्ड आगे आने वाले लोग उसको खरीदने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे?
गोल्ड बॉन्ड के लिए तो लोग को प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड रखना ही अपने आप में एक समस्या होती है. तो आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं. गोल्ड बॉन्ड में जो प्राइसेस इंक्रीज होता है वो लिंक होता है गोल्ड प्राइसेस से, तो बहुत सारे लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. और दूसरी बात ये, गोल्ड बॉन्ड को आप जो है जब कैश करना चाहें तो आप कैश भी कर सकते हैं. तो गोल्ड बॉन्ड में तो सरकार की रही है प्रेरित करने की, और आरबीआई टाइम टू टाइम ये गोल्ड बॉन्ड लेकर के आता है.
चंद्रशेखर जी, स्टूडियो में आने के लिए, कार्यक्रम में हमारे साथ में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसेस एंड विथ स्लाइट डिक्लाइन. सेंसेक्स क्लोजेज एट 80,040. निफ्टी सेटल्स एट 24,406. सेबी स्टडी वॉर्न्स अगेंस्ट इंट्रा डे ट्रेडिंग रिस्क. से यंग ट्रेडर्स राइज टू 48% इन 23-24. And India's medical devices industry to grow $50 billion by 2030, says Drug Controller General of India Rajiv Singh Raghuvanshi. And that's all we have time for in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar.
Namaskar. Namaskar.
Market Central.